الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، إلى الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم نے کل سے جس سلسلہ کلام کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ خدا کی مدد کے ساتھ اس کو ایک مقام تک لے جانے کی نیت رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں ان اصول و قواعد کی معرفت حاصل کر لیں کہ جن پر ہم اپنے دین کی، بلکہ اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کر سکتے ہیں اور اوپر اٹھا سکتے ہیں، بلند منازل تک لے جا سکتے ہیں. اور اس بارے میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اور استمداد ہے، یعنی کہ ہم جہاں سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں، وہ جملے ہیں کہ جو ہمیں نہج البلاغہ کے وسیلے سے ملے ہیں. میرے ذہن میں تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ حضرات کے سامنے نہج البلاغہ کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کروں، لیکن شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ اہل نظر ہیں، صاحبان علم ہیں، تو اس قسم کا بیک گراؤنڈ تو آپ کے علم میں ہو گئی کہ نہج البلاغہ کس تناظر میں لکھی گئی، اور یعنی کہ ایک دو جملے جو کافی اہم ہوتے ہیں اس حوالے سے، وہ یہ کہ نہج البلاغہ نمبر ایک امام علی علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے، اور نمبر دو امام علی علیہ السلام کے تمام کلمات پر حاوی نہیں ہے. یہ دو باتیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بک ہو جو خود امام علی علیہ السلام نے لکھی ہو، نہج البلاغہ ایسی نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جتنا کچھ بیان فرمایا یا جو کچھ بتایا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی کمپلیٹ کمپائلیشن ہو. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمارے پاس اگر نہج البلاغہ میں 238 خطبات ہمارے پاس ہیں، اور تقریباً میرے خیال ہے 100 کے قریب مکتوبات ہیں، تو اس میں بہرحال علم و معرفت کے بڑے خزانے موجود ہیں. اور یعنی مجھ حقیر کی نظر کے مطابق نہج البلاغہ کی جو شرحیں ہیں وہ بھی ہمارے اپنے علماء میں کم تھیں، یعنی کہ ابھی متاخرین میں جو لیٹ آنے والے علماء ہیں انہوں نے اس پر زیادہ کام کرنا شروع کیا ہے، نہج البلاغہ کی تشریح کے حوالے سے. کہ ابھی یعنی شہید مطہری کی زندگی نے وفا نہیں کی، انہوں نے ایک کتاب شروع کی تھی سیر در نہج البلاغہ. پھر آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی، ان کے کچھ ان خطبات کے ہیں. پھر ان سے پہلے کے علماء میں استاد علامہ شاعرانی نے امام علی علیہ السلام کے کچھ خطبات کی تشریح کی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے نہج البلاغہ کے کچھ حصوں کی تشریح کی ہے. تو لیکن ہمارے پاس جس طریقے سے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور تفاسیر ہمارے پاس متعدد ہیں اور مختلف ادوار میں ہیں, اس طریقے سے ہمارے پاس نہج البلاغہ کی تشریحات نہیں ہیں. بہرحال تو یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ مومنین کو اس حوالے سے بھی متوجہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جب امام علی علیہ السلام کی ولایت پر فخر کرتے ہیں اور اس کو اپنی دنیا اور آخرت کا سرمایہ قرار دیتے ہیں تو بہرحال ولایت کا تقاضا تقرب ہوتا ہے. ولایت کا جو بنیادی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ولایت ہم سے جو چیز مانگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ولی ہو اس سے قریب ہو یا نہیں ہو. تو قربت میں, قربت کے لیے سب سے پہلی جو شرط درکار ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے ولی کے مزاج سے, اس کی سوچ سے, اس کی فکر سے آپ آگاہی رکھتے ہیں اور پھر ہم آہنگ ہیں یا نہیں. اگر یہ دو باتیں انسان کے لیے میسر نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ولایت کا دعویٰ جو ہے نا وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ اور مشق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ولایت ڈیفائن ہوتی ہے تقرب سے. تو اسی عنوان سے کہ ہم نے اس جو ہمیں چند گھنٹے مل رہے ہیں مومنین سے بات کرنے کے, تو ہم نے اس میں یہی نیت کی کہ انشاءاللہ نہج البلاغہ کے کچھ کلمات سے ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے, ان سے مومنین کو ذرا قربت دلائی جائے, اور ان میں موجود جو امام علی علیہ السلام کے بیان کردہ معارف ہیں ان کو ایک حد تک اپنی ناقص کوشش کے ذریعے سے اجاگر کرنے کی ایفرٹ کی جائے. تو ہم نے اصول دین پر بات کی تھی, لیکن کل ہم نے جو اصول دین کے حوالے سے بات کی تھی تو وہ ایک لحاظ سے ان کنونشنل یوں تھی کہ ہم نے اصول کو فاؤنڈیشن کے طور پر پیش کیا, نہ کہ اصول دین کا معنی اس طریقے سے بیان کیا کہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اصول دین یعنی عقائد کا ایک سلسلہ, کہ اصول دین سے مراد ہم عام طور سے لیتے ہیں یور سیٹ آف بلیفس. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا جو وجود ہے یہ حقیقتاً ایک ایسا وجود ہے جو ارتقاء پذیر ہے, ایوالونگ ہے, ڈیولپنگ ہے, اور اسی بنا پر ہم انسان کے وجود کو ایک عمارت سے تعبیر کر سکتے ہیں, ایک کمپلیکس سے, کمپلیکس سٹرکچر سے تعبیر کر سکتے ہیں, کہ جس میں اگر آپ یعنی اب وہاں سے اگر ہم اس مثال کو لیں تو ہمارے لیے اس کی کچھ جزئیات کو واضح کرنا بھی اتنا دشوار نہیں رہتا, کہ اگر آپ ایک کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں, کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آبویسلی اس کے لیے آپ کو فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ حقیقتاً اصول دین ہے. وہ یعنی اصول دین کی اگر آپ حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادیں ہیں جس پر آپ کے وجود کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس بات کو ہمیں ریئلائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین کسی قسم کے سیٹ آف ٹیچنگز کا یا ریچولز کا یا کسٹمز اور ٹریڈیشنز کا نام نہیں ہے, بلکہ دین زندگی کا نام ہے. اور دین جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو ایک بہت بڑے, بہت ہی عظیم الشان نظام کو اتنا سہل اور آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک انسان کے جو اس عظمت حقائق الہیہ کے مقابلے میں طفل مکتب بھی نہیں کہلایا جا سکتا, یعنی ہم لوگ جس مقام پہ موجود ہیں, لیکن ایون ہمارے لیے بھی اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم بھی اپنی راہ کا تعین کر سکتے ہیں اور اس کو طے کر سکتے ہیں. ورنہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن لوگوں نے دین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹ ان کی باتیں ہو گئی ہیں جو فلاسفہ الہیین ہیں, میں ان فلاسفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میرے ملحدین ہیں یا کسی اور طرف جاتے ہیں, میں ان فلاسفہ کی بات کر رہا ہوں, سقراط اور فیثاغورس اور افلاطون और अरस्तु और प्लोटाइनस और इस किस्म के लोग के जो इलाहीन थे, बिल्कुल पक्के बिलीवर्स, इन्हें खुदा को मानने वाले और मुवाहिदीन में से थे। लेकिन उनकी भी बात अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा दुश्वार लगेगा कि जिस पैराए में, जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की और बयान की। तो ये अंबिया का कमाल है, ये वही का कमाल है, ये हामिलान वही की अजमत है कि उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये जितना कुछ भी है ना, ये कोई खाली दर्स व बहस है, या ये खाली कोई एक रिचुअल्स और कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं कि बस उनको फॉलो किया और दीन के नाम से काम पूरा हो गया। नहीं, बल्कि दीन जिंदगी है। और अगर कोई इंसान वाकई जिंदगी के स्कोप को फील कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, तो अगर मैं ये जुमला कहूं कि जिंदगी जो है ना, वो इन्फिनिटी है, लामहदूदियत का नाम जिंदगी है। जिंदगी यानी जिस तरीके से अगर हम अपनी टेलीस्कोप्स को आसमान की तरफ रुख करते हैं, तो अभी तक इन्हें जो कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है वो 92 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है, लेकिन उसके बावजूद कोई ये नहीं कह सकता कि जहां जहां तक हमारी टेलीस्कोप्स देख पा रही हैं, वहां पर यूनिवर्स खत्म हो रही है। तो ये वो क्लूज हैं, ये वो इशारे हैं हमारे लिए कि जिंदगी की वसअत, जिंदगी की अजमत हमारे जहन से और हमारी अकूल से और हमारे कुव्वे फहम और इदराक से बहुत बालातर है। तो ये दीन हकीकतन हमको उस जिंदगी से हमाहंग करने के लिए आया है। ये दीन जो बजरिया वही हम पर नाजिल किया गया, हमारे सामने रखा गया, उसका मकसद इसलिए था कि हम उस लाइफ को, जो मैं कल कह रहा था कि जो यूनिवर्स है, जो नामालूम कितने तरीकों से सिफात व अफआल इलाही को मैनिफेस्ट करती है, इस वजूद इंसान की खसूसियत यह है कि ये वो आईना बन जाए कि कायनात में मौजूद उन तमाम सिफात को रिफ्लेक्ट कर सके, उनका मजहर बन सके। ये मकसद आमद दीन है, ये मकसद नुजूल दीन है। तो बहरहाल, क्योंकि ये सब बातें आमतौर से हमारी कन्वेंशनल विजडम से मुताबिकत नहीं रखती, हम लोग आमतौर से जिस लैंग्वेज में बात करते हैं या अपने लिए जिस किस्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गुफ्तगू उससे बहुत ज्यादा मुताबिकत नहीं रखती, तो हमें बहुत अजीब लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है, यानी कि हकायक जब भी बयान किए गए हैं, और जैसे कि चौथे इमाम के से भी मंसूब इस किस्म के अशआर हैं कि मैं अगर हकीकत को बेआईने ही बयान कर दूं तो लोग मुझ पर कुफर का फतवा लगा देंगे। तो इस एतबार से बहरहाल, यानी कि जो कोशिश है कि रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को हमाहंग करें उन उस फिक्र से, उस विलायत की राह से जो कि हकीकतन कुरान और अहले बैत की है। ठीक है, ये एक मुकदमा के जो थोड़ा सा 5 मिनट बयान करना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि तमाम सामेईन और हाजरीन जो है वो गुफ्तगू से अटैच हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं कि गुफ्तगू किस पैराई में हो रही है। तो हमने कल ये बात की थी कि अगर उसूल दीन का मतलब वो फाउंडेशन है जिस पर मेरी जिंदगी की इमारत को तामीर होना है, तो उस फाउंडेशन की जो पहली लेयर है वो मारिफत नफ्स है, यानी अपने नफ्स को पहचानना, जिंदगी के सफर में, दीन की राह में, सुलूक इलल्लाह में पहली मंजिल है। और उसके लिए कल मैंने दलाइल आपकी खिदमत में कुरान करीम से भी नकल किए थे, और इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमलों में से भी आपके सामने ये बात रखी थी कि जहां से ये बात बिल्कुल वाज़े तौर से हमारे सामने आ रही है कि दीन की इब्तदा हकीकतन मारिफत खुदा से है, अव्वलुद्दीन मारिफतुल्लाह, लेकिन ये मारिफत इलाही खुद मौकूफ है मारिफत नफ्स पे, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। तो पहली जो आप मॉर्टर की लेयर लगाएंगे अपनी फाउंडेशन में, वो कौन सी लेयर होगी? मारिफत नफ्स की। और उसके साथ साथ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जिंदगी जो है वो एक ट्रायंगल की सूरत में एग्जिस्ट करती है, यानी इंसान, اللہ جو حقیقت مطلق اور الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اور کائنات، کہ کائنات یعنی کہ وہ تمام کے تمام نظام مخلوقات یا نظام امکانات کہ جو صفات و افعال الہی کے مینیفیسٹیشن کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور یہی انسان جب ترقی کرتا ہے اس کی ترقی یافتہ شکل جو سامنے آتی ہے وہ ہے نبی اور امام اور ولی۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اس ٹرائنگل میں سے جو ہے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ کو مائنس کر دیا، بلکہ جو حقیقی انسان ہے وہ وہی ہے، وہی حقیقی انسان ہے۔ ہم انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے زیر سایہ یا ان کی مدد سے یا ان کی ولایت کے سائے میں، لیکن حقیقتاً انسان وہی ہیں کہ جن کو انسان کہا جائے گا، جو انسان ہونے کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ تو پہلی لیئر معرفت نفس، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یعنی جہاں پر کل ہم نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام نے خطبہ اول، یعنی خطبہ اول جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی امام علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے جناب سید رضی نے اس کو ترتیب دیا ہے تو اس ترتیب میں جو پہلا خطبہ آتا ہے، اس پہلے خطبے کے اندر امام علی علیہ السلام نے تقریباً بہت سارے موضوعات پہ بات کی۔ تو اس میں خلقت آدم کو بیان کرنے کے بعد کا جو پیراگراف تھا وہ میں نے آپ کو اس میں سے کچھ جملے سنائے تھے، اور وہ یہ جملے تھے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے انبیاء میں سے انبیاء کو اتخاذ کیا، مصطفیٰ کیا، چنا اولاد آدم میں سے، اور وحی کا میثاق ان سے لیا، تبلیغ رسالت کی امانت ان کو سونپی، اور ان کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کا عہد یاد دلائیں، اور جس طریقے سے شیاطین نے انسانوں کو گمراہ کر دیا اللہ کی معرفت سے اور اللہ کی عبادت یعنی حقیقی عبادت سے ان کے تعلقات کو کٹ آف کر دیا، تو انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ پے در پے ایک کے بعد ایک آنے والے نبی خدا نے کیوں بھیجے؟ اب یہ تین کی ورڈز ہیں جس کو ہم انشاءاللہ آج کی حد تک اس پر بات کریں گے، اور پھر یہ اس پہلے اصل کو یعنی معرفت نفس کو ہم کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، استادہ کریں انبیاء کیا کام کریں؟ میثاق فطرت کو، یعنی فطرت کے اندر ایک پکا عہد ہے، میثاق کہتے ہیں باوثوق عہد کے، کہ جس پر 100% ریلائنس پاسبل ہوتا ہے اور جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں موجود ہوتا۔ میثاق فطرت ہی، فطرت کے میثاق کو۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، اور پھر دوسری جو اہم ترین بات ہے وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، دفائن العقول، اور انسانوں میں وہ انقلاب برپا کریں کہ انسان اپنی عقلوں میں دفن خزانوں کو نکالنے کے قابل ہو جائیں، اور تیسرا یہ کہ ان کو خدا کی مقدر کی ہوئی آیتیں دکھائیں، اور وہ آیتیں کیا دکھائیں؟ کہ وہ چھت یعنی وہ آسمان نظام کیہانی جو ان کے سر پر ہے، وہ زمین جو ان کے پیروں کے نیچے ہے، کس طریقے سے ان کی معاش اور معیشت کو خدا نے ترتیب دیا، ان کی اجل یعنی ان کی موت کو کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں قرار دیا، اور ان کی زندگیوں میں مختلف حوادث، مختلف ایونٹس کیسے ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کی جو پوری لائف ہے وہ امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور آیات الہی سے پر بھی، کہ ہماری زندگی میں آنے والے تمام حوادث حقیقتاً آیت الہی، آیت الہی کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام اس میں ہمارے لیے موجود ہوتا ہے۔ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ یہ تین کام کریں انسانوں کے ساتھ، کہ میثاق فطرت کو کھڑا کریں، عقول میں چھپے ہوئے دفن خزانوں کو باہر نکالنے کے لیے انقلاب برپا کریں، اور خدا کی مقدر کی ہوئی آیتوں کو دیکھنے کی طرف، ان کے مشاہدے کی طرف اور ان سے استفادے کی طرف متوجہ کریں، اور اس میں کائنات اور زندگی اور دنیا یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے وہی میں نے کہا کہ لائف جو ہے وہ پوری اس ٹرائنگل سے ڈیفائن ہوتی ہے، انسان، انسان کا نفس، خدا اور کائنات اور یہ جو بھی ہمارے ارد گرد عوالم ہیں. اس میں میں ایک چیز چھوٹی سی عرض کر دوں جو شاید ہمیں ہمارے موضوع کے لیے فائدہ مند ہو، کہ آج انشاءاللہ آج کی گفتگو کے بعد میں توقع رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ گفتگو جلدی شروع کر دیں، کہ شاید یعنی ہمارے پاس آخر میں کچھ وقت نکل آئے سوالات کے لیے اور کچھ ڈسکشن کے لیے جو ایسے موضوعات پر ہمارے میرے نقطہ نظر سے واجبات کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو 100% کلیئر نہیں ہوں گی، اور اسپیشلی کہ جب میں آپ سے ریموٹلی بات کر رہا ہوں تو اس میں اور زیادہ تھوڑا سا گیپ بڑھ جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آخری آدھے گھنٹے میں ہم کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے آپ کے معروضات یا تنقیدات بھی سننے کا موقع ملے گا. کل کی گفتگو پر ایک سوال میرے پاس آیا تھا، یہی آسٹریلیا میں ایک مومن برادر نے سوال کیا تھا، اور اچھا سوال ہے کافی، کہ جب ہم انسان اور کائنات اور خدا کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ تھا کہ کیا انسان کائنات میں نہیں ہے، کیا انسان کائنات کا حصہ نہیں ہے، کہ جسے ہم کائنات سے الگ ہٹ کر ایک اینٹیٹی کے طور پر بیان کریں. یہ بہت عمدہ سوال ہے، ایک اچھا نقطہ فکر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کائنات میں ہے اور نہیں بھی ہے، اسی وجہ سے ہم الگ سے سوال کر رہے ہیں کہ خداوند کریم نے انسان کو جب انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے دو مین ڈائمنشنز کی بات کی ہے، اور یہ معرفت نفس کے حوالے سے انتہائی اہم نقطہ ہے کہ انسان کی دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ انسان کو مٹی کے خلاصے سے یا مٹی اور پانی کے ملاپ سے پیدا کیا، اس لحاظ سے انسان 100% کائنات کا حصہ ہے، پروڈکٹ آف یونیورسل لائف ہے. لیکن اس کے بعد جب خدا نے فرمایا کہ وہ نفخت فیہ من روحی، کہ انسان کو زندگی عطا کرنے والی شے روح خدا ہے، روحی یعنی میری روح، تو انسان کو زندگی عطا کرنے والی انرجی کو اللہ نے اپنی آپ سے نسبت دی، اس حوالے سے انسان کائنات میں نہیں ہے. تو اس بنا پر، اس بنا پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹرائنگل میں انسان کی جو امپورٹنس ہے، یہ انسان بحیثیت اینٹیٹی ایک سیپریٹ ایگزسٹنس رکھتا ہے، اور اسی بنا پر زندگی کا جو ٹرائنگل ہے اس میں انسان ایک اپنی انفرادیت اور خصوصیت کے ساتھ موجود ہے، نہ کہ کائنات کے ایک مظہر کے طور پر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال میں آپ کو ایک دے سکتا ہوں کہ اگر آپ اس مثال کے حوالے سے غور کریں کہ جیسے پھل ہے، جب آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، جیسے آم کا درخت لگاتے ہیں، تو آم کا درخت کبھی بھی آپ درخت کے لیے نہیں لگاتے، بلکہ آپ وہ درخت لگاتے ہیں ایک پھل کے لیے. وہ پھل آپ کو درخت لگانے کے ساتھ نہیں مل جاتا، بلکہ اس کے لیے پہلے آپ کو پوری باغبانی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، زمین صاف، ہموار، درخت کی نگہبانی، دیکھ بھال، اور اس کے بعد جب وہ پھل صحیح سالم درخت میں نمودار ہوتا ہے اور پک جاتا ہے، اپنے کمال تک اور اپنی تمامیت تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ پھل درخت کا حصہ نہیں رہتا اور اس کی اپنی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے. تو انسان جو ہے وہ اس کائناتی زندگی کا پھل ہے، میوہ ہے. कि जो इसी में से ग्रो करता है, इसी में से परवान चढ़ता है, इसी में अपने कमाल तक पहुंचता है, लेकिन वो बागबान ने अपने लिए लगाया है, बागबान ने यह सारा दरख्त इसलिए लगाया है कि वो उस फल को ले। इसीलिए जैसे मैं कल भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अफौमोली व अना अज्जी बेही, कि अगर तुम रोजे को खालिसतन मेरे लिए रखते हो तो फिर उसकी जजा में, क्योंकि तुम अगर अपनी जात को, ये जैसे हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी बात करते हैं कि जिस तरीके से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ खुदा के लिए पेश किया और कुर्बान किया, तो उसकी जजा कोई जन्नत नहीं हो सकती, कोई भी जन्नत उसकी जजा नहीं हो सकती, बल्कि उसका जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ वही जात हो सकती है कि जिसके लिए ये सारी कुर्बानी दी गई। ये है नफ्स इंसानी की कदर व कीमत, और इसीलिए मारिफत नफ्स जो है वो असल अव्वल है, कि अगर हम इस चीज को पहचानते हैं, इस हकीकत को दर्क करते हैं, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू हमारी नजरों में उजागर होती है, तभी हम हकीकतन अपनी लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन ले सकते हैं और हर चीज को उसका मुनासिब मकाम दे सकते हैं। इसीलिए फरमाया मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, कि तुम अपने रब की बंदगी का हक उसी वक्त अदा कर सकते हो जब अपने आप को पहचानते हो। कि जैसे आइम्मा अलैहिस्सलाम के ये जुमले मौजूद हैं कि तुम्हारे नफ्स की कीमत, तुम्हारे बदन की कीमत बेहिश्त है, उसके अलावा किसी को किसी और कीमत पर उसे ना फरोख्त करना। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के जुमले, तुम्हारे जसद, तुम्हारे बदन की कीमत, ये जन्नत जो है ना, ये आपके बदन के आमाल के मुकाबले में है, न कि आपके नफ्स के इर्तका की, नफ्स की परवाज की कीमत बेहिश नहीं है। और इस पर ही मीर बाकिर दामाद ने वो एक जुमला और इजाफा किया था कि अगर इंसान के बदन की कीमत जन्नत है तो इंसान के नफसानी और रूहानी कमालात की कीमत क्या होगी, उसकी जगह क्या होगी, फिर आप खुद समझ सकते हैं। तो इस वजह से असल अव्वल मारिफत नफ्स है। अब हम दोबारा लौटते हैं कि जैसे आज यानी मारिफत नफ्स के स्कोप को थोड़ा सा हम और वाइड कर लें और वाजे कर लें, ज्यादा फर्म और स्टैब्लिश्ड कर लें इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलेमात की रोशनी में। तो अब हम देखते हैं कि नहजुल बलागा इस बारे में हमारी मारिफत को बुलंद करने में क्या मदद करती है। कलिमात बहुत सारे, मौजूआत बहुत बन सकते हैं, जाहिर है कि वो फिर मैं पूरा साल ही आपसे हर वीक गुफ्तगू कर सकता हूँ इस, अगर नहजुल बलागा से जुमलात लेते जाएं, खुद बात में से निकालते जाएं, लेकिन पूरी कोशिश और दिक्कत के साथ कुछ बातें जमा करके कि जो आपके लिए वाकई फायदेमंद हूं इसमें, इस रस्ते को उजागर करने में। हिकमत नंबर 7 नहजुल बलागा, हिकमत कलिमात क़िसार या विज़डम्स ऑफ नहजुल बलागा नंबर 7, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अजब है, अजब इंसान के लिए अजब है। क्यों अजब है? कि ये इंसान एक चर्बी से देखता है, वो यतकल्लमो बिल्लहम, एक गोश्त के टुकड़े से कलाम करता है यानी जबान, व यस्मउ बिअज़्मिन, हड्डी से सुनता है, यानी आपको अच्छी तरह पता है कि कान के अंदर जो पूरा एक ड्रमिंग मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से साउंड्स को हम सुन पाते हैं, वो हड्डी वाला ही पूरा निज़ाम है, के हड्डी से सुनता है, वह यतनफ्फसु बिखर्मिन, और एक सुराख से सांस लेता है। यानी इंसान की जो पूरी ये जो लाइफ है, इसका दारोमदार क्या चीज है? देखना, देखने के लिए चर्बी है, चर्बी का मतलब ये जो हमारी आंख का लेंस और ये सब जो भी है, जो मेनली फैट्स हैं, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं। गोश्त के एक टुकड़े से बोलता है, हड्डी के जरिए से सुनता है, और एक सुराख से सांस लेता है। अच्छा, ये यानी कि इसका पहला तो जो है वो मतलब जो फौरी तौर पर सामने आता है वो ये सामने आता है कि इंसान को अल्लाह ने जो जिस्म दिया है ये वर्थ वाइल, इसकी वैल्यू है, ये वैल्यूएबल है। ये जिस्म ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे लोग, अगर फॉर एग्जांपल जो सूफी गरी है उसके तहत कहें कि जी ये जिस्म ऐसा है कि ये किसी काबिल नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, वर्थलेस है, और तमाम की तमाम अहमियत जो है वो रूह की है। इस नजरिए को कुरान और अहले बैत 100% रिजेक्ट करते हैं। 100% रिजेक्शन है इस किस्म के नजरिए का, कि अगर कोई ये समझता है कि ये जिस्म जो है ना, ये कोई वर्थलेस टूल है, ये एक मुसीबत है, जो बाज़ वक़ात मतलब जो लोग अहले रूहबानियत हैं, जो जिस किस्म के नजरिया दे रहे होते हैं कि ये एक मुसीबत और बोझ के तरीके से नफ्स इंसानी पर लदा हुआ है, ऐसा हरगिज नहीं। ये एक इंतहाई हकीमाना सिस्टम है, और इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बगैर आप अपनी नफसानी और रूहानी तरक्की को अचीव कर ही नहीं सकते। ये बहरहाल एक अलग मौजू है जो जिहाद नफ्स के जैल में, जिस पर बात तफसीलन हो सकती है। अच्छा, यहां मैं एक बात अर्ज करूं कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चीजों को ज्यादा साइंटिफिक और यानी जदीद जो साइंसी नजरियात और तहकीकात हैं उनकी रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं, तो कोई अगर ये बात कहे कि भाई हम चर्बी से थोड़ी देखते हैं, यानी हम आईज के लेंस से थोड़ी देखते हैं, बल्कि हकीकतन हम दिमाग से देखते हैं, यानी जो रेटिना में इमेज बनता है, रेटिना जो बैक ऑफ द हेड में, कि ये आईज हमारी आईज लाइट को या इमेज को कैप्चर करती हैं, फिर उसके बाद पूरा एक रॉड्स एंड कोन्स का एक सिस्टम है कि जो इस लाइट को या जो भी डेटा है लाइट कलर और उन सब का वो रेटिना तक पहुंचाता है, फिर रेटिना के साथ ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई होती है और वो हमारे लिए इस पूरे रोशनी के मलोबे को एक बाकायदा तस्वीर बनाती है। तो हम चर्बी से तो देखते ही नहीं है, तो नऊज़ुबिल्लाह इमाम अली गलत साबित हो गए कि आप कह रहे हैं कि इसी तरीके से आपके पास जो सेंसेशन ऑफ साउंड है वो भी फकत ये ईयर में जो मैकेनिज्म है हड्डियों का, जो प्योरली मैकेनिकल सिस्टम है, एक ड्रमिंग मैकेनिज्म है, मेम्ब्रेन है, उस पर जो छोटी सी हड्डी है जो हैमरिंग का काम अंजाम देती है ड्रमिंग का, आप उसकी बात कर रहे हैं कि हड्डी से सुनता है तो, लेकिन वहां से भी जो सिग्नल्स जाते हैं दिमाग तक वो हमारे लिए उन वाइब्रेशंस को आवाज बनाते हैं। तो हम ये सारे काम समाअत तो बसारत वाले अपने दिमाग से कर रहे होते हैं, तो ये इमाम अली क्या कह रहे हैं। लेकिन यहीं से हमको जिस्म की अहमियत समझ में आती है, इन्हें मारिफत नफ्स के अंदर। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये एक इंतहाई अहम तरीन नुकता है कि मारिफत नफ्स में कोई इस बात का, इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाए कि जिस्म वर्थलेस है। ये जुमले इमाम अली अलैहिस्सलाम के मैंने खास तौर से इसलिए नकल किए हैं कि आप पर अगर आप अपने नफ्स को तरक्की देना चाहते हैं तो आपके लिए अपने जिस्म को प्रॉपर हालत में रखना भी जरूरी है, ताकि आप उस जिस्म को खुदा की राह में मुजाहिदात में सर्फ करें। इसलिए नहीं कि जिस्म को लज्जतों के रास्ते में लगाएं, इसलिए नहीं जिस्म की देखभाल जरूरी है, इसलिए नहीं जिस्म की अहमियत है कि उसको लज्जतों और शहवतों के पूरा करने में सर्व किया जाए, बल्कि इस जिस्म को ही, इसी से मुजाहिदात होते हैं, इसी जिस्म के जरिए से ही आप इबादात को अंजाम देते हैं, यही जिस्म आपका जब मुशक्कतें उठाता है इबादात की, नमाज शब की, रोजे की, हज की, तभी आपके नफ्स पर अनमिट नकूश मुरतब होते हैं। तो अगर हम ये बात कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि हम सुनते और देखते दिमाग से हैं, लेकिन आप इस चर्बी के टुकड़े को बीच में से हटा दीजिए, फिर दिमाग देख ले, आप उस हड्डी को बीच में से निकाल दें, दिमाग तो अपनी जगह रहेगा ना, दिमाग तो अपनी जगह मौजूद है, फिर क्यों नहीं देखता और सुनता। इमाम अली गलत नहीं है, इमाम अली गलत चीज की तरफ पर फोकस और एम्फोसाइज नहीं कर रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अगर एक चीज की अहमियत के कायल होते हैं तो बाकी सबको रगेड़ डालते हैं, बिल्कुल उसको डिमोलिश कर देते हैं। तो मारिफत नफ्स में, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसूल दीन है, उसूल दीन क्या है कि आप फाउंडेशन ले कर रहे हैं, और फाउंडेशन ले करने में आपको अपने नफ्स की मारिफत, खुद अपने आप को आप पहचान रहे हैं, ताकि आप अपने नफ्स को सही तरीके से उस राह पर लगा सकें कि जहां से आपकी तरक्की और बुलंदी शुरू हो, सफर शुरू। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि आप फरमा रहे अजब है, इन्हें खुदा ने ये जो हैरत अंगेज निजाम बनाया है, ये जो हैरत अंगेज निजाम बनाया है, ये वर्थलेस नहीं है, यूजलेस नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि इसको बेकार करार दे के साइड में डाल दो। ये जो चर्बी है जिससे तुम देख रहे हो, ये जो हड्डी है जिससे सुन रहे हो, ये जो गोश्त का टुकड़ा है जिससे बोल रहे हो, इसकी वर्थ है। ये अजाएबात खिलकत इलाहिया में से हैं, इसकी वर्थ को पहचानो, इसको जाया नहीं करना, इसकी हिफाजत करना, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया है कि इसको खुराफात में बर्बाद करो, ठीक है। ये मारिफत है नफ्स का एक एक पहलू। दूसरी बात, और क्योंकि जिंदगी के अंदर इस किस्म के पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमें चीजों को ना पूरा नेटवर्क बनाना जो है वो हमारे लिए मारिफत का जरा दुश्वार हो जाता है। अच्छा, अब चलिए हमने ये मान लिया कि ये जिस्म का जो निजाम है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और लायक ताज्जुब है, फरमा रहे अजब है ये इंसान, क्या निजाम खुदा ने इसके, ये जिस्मानी निजाम खुदा ने क्या रखे हैं, क्या बात, अजब है, दुरुस्त। लेकिन ये जो मुहय्यरुल उकूल कॉम्प्लेक्स है, क्या अब हम इसकी ही अहमियत के कायल हो जाएं, या इसकी कितनी अहमियत है, इसकी कितनी अहमियत है? तो अब हमें जो अगला मारिफत का नुक्ता हमारे सामने आता है, और उसके लिए भी मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलमात को ही नकल करूं, उनका सहारा लूं, कि हमें जो फौरी तौर पर यह बात समझ में आती है कि ये जिस्म अगरचे के इंतहाई शानदार खिलकत का मुजाहरा है और मजहर है, लेकिन उसके बावजूद ये वो हकीकत नहीं है कि जिस पर आप अपनी सारी बेट लगाएं, या ये वो बास्केट नहीं है कि जिसमें आप अपने सारे अंडे रख दें। क्यों? इसलिए कि जिस्मानी हयात की मुद्दत मुअय्यन है। अब यहां पर मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के दो जुमले आपको पढ़ के सुनाऊं, और ये एक काफी तवील खुतबा है, खुतबा गर्रा, यानी कुछ ऐसे खुतबात हैं नहजुल बलागा में कि जिनके जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान और शौकत और अजमत और बलावत के साथ गुफ्तगू फरमाई। तो उन खुतबात को सैयद रजी ने मुख्तलिफ, यह हो सकता है कि उनसे पहले ये इस नाम से ये आपके खुतबात मशहूर हों, या सैयद रजी ने यह नाम रखे हों, जैसे खुतबा अशबा है, खुतबा कासिआ है, ऐसे ये खुतबा गर्रा है कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, जिसमें जैसे आप कहते हैं ना कि एक इंसान जब फ्लो में आता है, बहना शुरू हो जाता है उसकी जबान, ये उस किस्म के कलमात हैं। तो उसमें से दो जुमले खाली आप जरूर इसका मुतालिया फरमाइएगा कि यानी जिसमें आप फरमा रहे हैं कि ए इंसानों, तुमको खुदा ने किस तरीके से पैदा किया, तुम्हारी जिंदगी का सिस्टम क्या बनाया, उसका फ्रेमवर्क नेटवर्क क्या है। आप फरमाते हैं फाकुम अददन, यानी अल्लाह ने तुमको ये सारा निजाम और ये जिंदगी में रखने के बाद तुमको घेर दिया है गिनती से। ये गिनती क्या है जिससे हमको घेर दिया है? ये हमारी जिंदगी के अय्याम। अब इस गिनती को अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा मुतवज्जे है तो मिनटों में भी शुमार कर सकता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी जिंदगी का शुमार मिनट बाई मिनट करते हैं, लेकिन हम इस किस्म के अफराद हैं कि जो अपनी जिंदगी को फॉर एग्जाम्पल मंथ्स और ईयर्स में ज्यादा शुमार करते हैं, दिनों का हिसाब नहीं रखते, दिन पे दिन जाया हो जाते हैं हमारे। अदद गिनती में तुमको घेर दिया है तुम्हारी जिंदगी को। वह वज़फ़ा लकुम मुददन, और तुम्हारे लिए एक मुद्दत को قرار کی ہے، دے دیا گیا ہے. فی قرار خبرتن ودار عبرتن. میں اس جملے کو تھوڑا سا چاہتا ہوں امام علی علیہ السلام کے کہ اس کو آپ کے لیے ذرا ایلیبوریٹ کروں، کیونکہ یہ بھی ہماری معرفت نفس کے حوالے سے اور معرفت حیات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ خبر خبر اور عبر عبرت، کہ جس زندگی میں خدا نے تم کو رکھا ہے، انتم مختبرون، کہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری خبر ظاہر ہو جائے، محاسبون علیہا، اس زندگی کی بنیاد پر تمہارا حساب لیا جا سکے، اور جس گھر میں تم کو رکھا ہے یہ دار عبرت ہے، دار خبرہ ہے، جہاں سے تمہاری خبریں، یعنی خبروں کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو تمہارے اندر پوٹینشیل رکھا اللہ نے، اس پوٹینشیل اور صلاحیت کی بنیاد پر تمہارے اندر سے جو کچھ نکل رہا ہے، علم میں سے، عمل میں سے، فکر میں سے، کردار میں سے، کردار کی شکل میں، یہ تمہاری خبر ہے کہ جو سیو ہو رہی ہے اور منتقل ہو رہی ہے تمہارے حقیقی گھر کی طرف، یعنی آخرت کی طرف. میں عبرت کے معنی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عام طور سے جب یہ ہماری زندگی کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دار عبرہ ہے، یہ عبرت کا گھر ہے، یہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ ریزیڈینشل پلیس نہیں ہے، بلکہ عبرت لینے کا گھر ہے. عبرت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ عبرت سے مراد ہوتی ہے نصیحت، کہ ہم کسی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے عبرت حاصل کر لی. لیکن عبرت کا مطلب ہوتا ہے حقیقتاً عبور کرنا، عبور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کراس کرنا. دار عبرت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تم کو ایک ایسے گھر میں رکھا ہے کہ جہاں پر حقیقت پردے کے پیچھے ہے، اور خدا نے تم سے یہ چاہا ہے کہ تم اس پردے اور اس سرحد کو عبور کر کے حقیقت تک پہنچو. یعنی ہم اگر کسی آثار قدیمہ میں کسی کھنڈر کی طرف جاتے ہیں، اس کا رخ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے عبرت حاصل کی. عبرت کیا حاصل کی؟ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، کیا عبرت آپ نے حاصل کی؟ یعنی اب یہ سناٹا، اب یہ اجاڑ اور ویران گھر، آپ کا دماغ اس ظاہری منظر کو عبور کر کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ جب یہاں پر لوگ اپنی زندگی کی پوری خوش سامانیوں کے ساتھ آباد تھے، جب انہی گھروں میں جو آج ہم کو اجاڑ اور ویران دکھ رہے ہیں، یہاں پر زندگی قہقہے لگا رہی تھی، تو آپ کی نظر نے سامنے دکھائی دیے جانے والے منظر کو عبور کیا، اس حقیقت کو دیکھا کہ لوگ اپنے لیے بہترین زندگی، محلات، گھر، خوشگوار ماحول بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عبرت حقیقت. تو یہ جس دار میں، جس گھر میں خدا نے تم کو رکھا ہے، یہ دار عبرت ہے. تو معرفت نفس کے حوالے سے دوسرا پہلو ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اس جسم کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، کرٹیکل اور کروشل امپورٹنس ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب کا سب ایک عدد کے اندر گھرا ہوا ہے، گنتی میں بند ہے. اس کی ایک اجل ہے، اس کی ایک مدت ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. اور اس میں ہم کیوں ہیں؟ تاکہ ہماری خبروں کو باہر نکالا جائے، ہمارے حساب کے لیے پورا نظام بنے، اور ہم سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب تک ہم اس میں رہیں گے ہم اہل عبرت میں سے ہوں گے، نہ کہ اہل عیش میں سے، کہ اس کو اپنے عیش کا ذریعہ سمجھ کر اور اس بنیاد پہ زندگی گزارے، بلکہ عبرت کی نظر رکھیں اس دنیا میں. دو باتیں ہو گئی معرفت نفس کے حوالے سے، کہ جو امام علی علیہ السلام ہم کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد तीसरा नुक्ता कि जो यानी इससे ज्यादा अब मैं जाऊंगा तो शायद बात बहुत ज्यादा ही तूलानी हो जाए, मैं ना बात को इतना फैलाना चाहता हूँ कि आप उसका अहाता कर सकें ना कर सकें, और ना उसको इतना तशना रखना चाहता हूं कि एक हमें एक माकूल और मजबूत मतलब भी ना मिल सके। अब देखें कि जो नफ्स इंसानी, इस नफ्स इंसानी से खुदा की एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी जैसे मैंने बताया है कि ये ज्वेल है इन द क्राउन इन द होल सिस्टम ऑफ दिस यूनिवर्स, उसका फल है। अगर ये कायनात दरख्त है तो उसका फल वजूद है इंसानी। लेकिन यहां पर एक अजीब पहलू हमारे सामने आता है कि अगर किसी शय को एक इंतहाई कमाल तक पहुंचना है तो आप उसे जबरन वहां तक नहीं ले जा सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नुक्ते को आप लोग गौर से समाप्त फरमाएंगे। यानी अगर किसी इंसान को किसी भी कमाल तक पहुंचना है इस दुनिया में, और आप कहें कि ये कमाल या तो जबरदस्ती उसको दे दिया गया है, यानी मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को भी कहें कि जनाब हमने आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे दी, हमने आपको फला काबिलियत लियाकत और ये सब चीजें अता कर दी, तो कोई भी उसको उस मेयार का इंसान मानने पे तैयार नहीं होगा। कि पीएचडी की आप डिग्री दे सकते हैं, काबिलियत किसी को नहीं दे सकते, अहलियत किसी को नहीं दे सकते। तो काबिलियत और अहलियत के लिए लाजमी और जरूरी है कि ये इख्तियारी हो। ये एक बहुत बहुत गहरा जुमला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक पहुंचेंगे कि अगर किसी को उसके कमाल तक ले जाना है, उसे बाकमाल बनाना है, तो बाकमाल बनने के लिए जरूरी है कि वो अपने इख्तियार से हरकत करे और अपने इख्तियार से कमाल तक पहुंचे। कि जैसे आप अगर अपने बच्चे को भी हर वक्त उसकी जान के पीछे लगे रहें और उसे उसके इख्तियार से अमल ना करने दें, आप उसे कतन किसी कमाल तक नहीं ले जा सकते, किसी भी कमाल तक नहीं पहुंचा सकते आप उसको। तो इसी तरीके से खुदा ने जब इंसान के लिए वो मकाम रखा, उस मकाम का इरादा किया, खलीफे खुदा बनाने का इरादा किया, तो उसके लिए जरूरी था कि ये खलीफा अपने सफर को अपने इख्तियार से तय करे। और जब राह इख्तियारी होती है तो उसमें ला मुहाला दूसरा ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यानी इख्तियार खाली एक तरफ का नहीं होता, इख्तियार दो तरफा होता है। कि अगर आप किसी के इख्तियार पर चीज को देंगे, रखेंगे, मुनहसिर करेंगे, तो वो गिर भी सकता है और उठ भी सकता है। दोनों दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे इख्तियार के साथ, वरना वो इख्तियार नहीं रहेगा, वो जबर में कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज के, अगर आप उसको फोर्स करें कि नहीं तुम खाली एक ही तरफ जा सकते। तो कमाल इख्तियार में है और इख्तियार में सुकूत और उरूज दोनों पॉसिबिलिटीज का एग्जिस्ट करना लाजमी अमर है। तो इसी बिना पर मारिफत नफ्स में जो तीसरा और अहम तरीन नुक्ता है वो ये कि नफ्स अपने सुकूत और अपनी सरबुलंदी दोनों को समझे और फिर इख्तियार से अपनी राह को मुंतखब करे। ठीक है, तो ये तीसरा रुकन जो अब अहम तरीन रुकन है मारिफत नफ्स का, कि इस हवाले से कि यानी इंसान का जो नफ्स है कि अगर अब अपने लिए यानी कि मैं खुदा चाहूं या नहीं चाहूं ये मेरा इख्तियार है, ये इख्तियार कि मैं अपने आप को इलाही बनाऊं या नहीं बनाऊं, मैं अब्दे खुदा बनूं या नहीं बनूं, नऊज़ु बिल्लाह, मेरा इख्तियार। मैं नुमाइंदे खुदा के पैगाम को कबूल करके अपना हाथ उसके हाथ में दूं या नहीं दूं, मेरा इख्तियार है। और ये ऐसा निजाम खुदा ने क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि इसके बगैर वो कमाल का उस कमाल का हुसूल ही मुमकिन नहीं है जिसके लिए इंसान को खल्क किया गया। तो अब मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के दो खुतबात के हवाले से आपको ये बात इंशाल्लाह उजागर करने की कोशिश करूं कि ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं इंसान के, ये दोनों किस जहत में किस स्कोप के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक आपका खुतबा है जो नंबर है 220, 220। अच्छा, नंबरिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। किस लिहाज से फर्क आता है कि अगर यानी हमारे उर्दू तर्जुमों के साथ, उर्दू तराजिम के साथ जो नहजुल बलागा पब्लिश हुई हैं, तो उनमें नंबर थोड़े से डिफरेंट हैं, और जो फारसी तराजिम के साथ नहजुल बलागा पब्लिश हुई हैं उनमें नंबर थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन एक दो खुतबात आगे पीछे होते हैं। तो ये मैं मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने जिस आलाल्लाह मकाम उन्होंने जिस जो तर्जुमा किया है नहजुल बलाग़ा का, मैं उसके मुताबिक नंबर आपको बता रहा हूँ 220। और उसका जो यानी कि जो जो दो खुतबात मैं इंशाल्लाह आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें से पढ़ के कुछ जुमले, तो ये दो खुतबात इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुरान की दो आयतों के ज़ैल में है। यानी आपने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसकी तफसीर बयान की, कुरान की एक आयत तिलावत फरमाई, उसकी तशरी बयान फरमा। ठीक है, तो एक खुतबा जो आपका है वो ये, आपने आयत पढ़ी, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आपने इस आयत की तलावत फरमाई, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। अब यहां पर जो बात हो रही है ये किससे हो रही है? इंसान से हो रही है। ठीक है, मोमिन से नहीं, मुसलमान से नहीं, किसी मखसूस फिरके तबके के इंसान से बात नहीं हो रही, उमूमियत के साथ इंसान से गुफ्तगू है कुरान करीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका, गर्रा गुरूर यानी धोखा, गुरूर का मतलब तकबुर नहीं है, गुरूर का मतलब धोखा। मा गर्रका, तुझे किसने धोखा दे दिया, धोखे में मुब्तला कर दिया, किस बारे में? बेरब्बे कल करीम, तेरे करीम रब के बारे में, तेरे रब्बे करीम के मामले में, ए इंसान तुझे किसने धोखा दे दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तिलावत फरमाई और फिर उसके बाद अपने खुतबे का आगाज हुआ। आप ये फरमाते हैं कि जिस शख्स, जो मसूल है, जो मसूल है यानी कि ये एक सवाल है ना, जो खुदा सवाल कर रहा है, इंसान से सवाल कर रहा है, आप फरमा रहे हैं कि मसूल जिससे ये सवाल किया जा रहा है उस पर ये हुज्जत कितनी ज्यादा कायम है खुदा की, और वो अल्लाह के इस सवाल का जवाब देने में कितना माजूर है। लकद अब रहा जहालतन बेनफ्से ही, क्यों माजूर है खुदा के इस सवाल का जवाब देने में, कि जो मैंने आपकी खिदमत में अभी नफ्स के ही हवाले से बात की ना, लकद अब रहा जहालतन बेनफ्से, ये वो है कि जिसने अपने नफ्स को जहालत में डुबोया हुआ है, गर्क किया। तो इस नफ्स के सुकूत का क्या सबब है? कि नफ्स अपने आप को गफलत और जहालत में गर्क कर दे, नफ्स गफलत और जहालत को अपना शिआर बना ले। तो ये इंसान क्या है? जो बात मैं वही आपको फिर दोबारा दोहरा हूं, देखिए बात वही हो रही है, नफ्स की जहालत किस बात का सबब बन रही है? गुरूर बेरब्बे करीम। और ये यहां से हमारे उस असली नजरिए की ताईद हो रही है कि मारिफत नफ्स, अगरचे के अव्वलुद्दीन मारिफतुल्लाह है, लेकिन मारिफत खुदा खुद मारिफत नफ्स पे मौकूफ है और डिपेंडेंट है, कि जिसने अपने नफ्स को जहालत में डुबोया हुआ है वो क्या है? गर्रक बरब्बे कल करीम, वो अपने रब्बे करीम के बारे में गुरूर और धोखे का शिकार है। तो ये जो मसूल है जिससे सवाल किया जा रहा है कितना माजूर है, उस पर ये हुज्जत कितनी कायम है? फिर आप फरमाते हैं ये दो जुमले, क्योंकि बड़े बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत जुमले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये भी सुना दूं, अगरचे के सुकूत के हवाले से मैंने बात मुकम्मल कर दी, कि नफ्स के लिए जो दो पॉसिबिलिटीज हैं जो उसको अपने इख्तियार की बिना पर हासिल होती हैं, उनमें से सुकूत किस बिना पर होता है, वो बात यहां से हमको समझ में आ गई। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा जर्रअका अला ज़म्बिक, तुझे किस चीज ने जुरत दे दी है कि तू खुले बंदों गुना करता फिरता है। वमा गर्रका बिरब्बिक, और किसने तुझे तेरे रब के बारे में धोखा दे दिया है। वमा आनसका बिहलकते नफ्सिक, और किस चीज ने तुझे मानूस कर दिया है इस बात से कि तू अपने नफ्स को हलाक कर दे। यानी ये गुनाहों वाली जिंदगी, रब के साथ फरेब में रहने वाली जिंदगी, रब के बारे में ये हकीकतन नफ्स की हलाकत है। अम्मा मिन दाएका बुलूलुन, कि क्या तेरे मर्ज के लिए, कौन सा मर्ज, ये जहालत और गफलत का मर्ज, क्या तेरे इस मर्ज के लिए कोई दवा नहीं। अम लैसा मिन नौमते का यकजतुन, क्या तेरी इस नींद के लिए कोई बेदारी नहीं है, क्या तुझे बेदार नहीं किया गया, क्या ये जो पैगामात वही हैं ये तेरी बेदारी के लिए काफी नहीं है। अम्मा तरहमो मिन नफ्से का मा तरहमो मिन गैरिक, इमाम अली अलैहिस्सलाम एक अजीब जुमला यहाँ बयान फरमाते हैं, क्या तुझे अपने नफ्स पर इतना भी रहम नहीं आता जितना तू दूसरे नफ्स के नफ्स पर रहम करता है। कि बसा औकात ऐसा होता है कि तू तपती हुई धूप में किसी को देखता है, मिन हर शम्स फतुज़िल्लुहु, उस पर साया कर देता है। औ तरल मुबतला बे अला मिन युमिद्दु जसदहु फतबकी रहमतन लहू, कि और अगर किसी इंसान को मर्ज के दर्द में तड़पते हुए देखता है तो उसकी शफकत की बिना पर तेरे आंख से आंसू निकल आते हैं। लेकिन तुझे अपनी हालत देखकर रोना नहीं आता, अपने नफ्स की हालत देखकर तुझे रोना नहीं आता। किस चीज ने तुझे अपने रब के बारे में, अपने नफ्स की इस्लाह के बारे में धोखा दे दिया। तो बात वाजी हो गई, गफलत और जहालत इंसान को यहां तक पहुंचा देती है। और इसी चीज को कुरान करीम ने सूरह यासीन में क्या कहा कि उनके वजअलना फी आनाकहिम अग्लालन, कि हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दी है। फहिया इलल अज़्क़ान, वो यहां उनकी ठोड़ियों तक है। फहुम मुकमहून, और उनके सर गोया हवा में हिल रहे हैं, क्योंकि अगर गले में तौक हो और ठोड़ी तक आ जाए तो इंसान अपने सर को जितनी भी जुम्बिश दे अपने आप को नहीं दिख सकेगा। ये ताबीर है कुरानी है कि ये जो गफलत और जहालत है ये वो गर्दन में पड़े हुए तौक है, जो ठोड़ियों तक है, जो इंसान को खुद अपना आप नहीं देखने देते। कि दूसरे को देखकर तो रहम आ जाता है, अपनी जात को तबाह पे तबाह किए चला जा रहा है, अपने आप पर रोने की तौफीक नहीं, अपने आप पर दुख करने की मोहलत और फुर्सत नहीं है। ये एक पहलू के नफ्स अगर खुदा ना खास्ता सुकूत करेगा तो उसकी अलामत क्या है, जिस पर हमें मुसलसल अपने आप को देखना है और समझना है। ये तीसरी असल जो है, यानी असल जो है मारिफत नफ्स, उसके मैंने आपके सामने तीन चार नुकात रखे, और उसमें जो तीसरी और अहम तरीन फसल है उसका ये एक एक पहलू। अब उरूज, तरक्की, ये तरक्की कहाँ और किस हद तक मुमकिन है, आप इसको भी मुलाहिज़ा कर लें कि ये कहां पर है। इसी से पहले वाला खुतबा है 219, 219, उसमें आप आयत की तिलावत फरमाते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। वो मर्द है, और ये आयत कहां पर है, ये सूरह नूर है, ठीक है, आया नूर, सूरह नूर, आया नूर की वजह से उसकी शोहरत है, और आया नूर का नंबर 35 है, سورہ نور کا نمبر 24 ہے، آیہ نور کے بعد والی آیہ نور کون سی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے بعد آیہ نور کے بعد والی ایک دو آیتیں جو اس کی کنٹینیویشن نہیں ہیں، اس میں بیان ہوتا ہے کہ یہ نور والے لوگ کون ہیں؟ رجال، ان کچھ مرد ہیں، لا تلہیہم، جن کو لہو میں مبتلا نہیں کرتی، اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی، ان کے دلوں کو موہ نہیں لیتی، لبھاتی نہیں، تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تجارت نہ حلال خرید و فروخت، ٹھیک ہے، بیع اور ربا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، ربا یعنی وہ ٹریڈنگ، وہ معاملات جس میں سود آتا ہے، بیع یعنی وہ ٹریڈنگ، وہ معاملات جو جائز اور حلال سود سے پاک ہے، ربا جس میں نہیں، تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ذکر الہی سے، یاد الہی سے تجارت اور خرید و فروخت ان کو لہو میں مبتلا نہیں کرتی، اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی. اس میں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تجارت اور خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن اس دوران میں ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہاں سے پھر وہی بات سمجھ میں آ گئی کہ ترقی کا رستہ یہ نہیں ہے کہ آپ جسم اور جسمانی تقاضوں اور جسمانیات کو نلیفائی کر دیں اور انائیہلیٹ کر دیں، لیکن ان سب کو ذکر خدا کے ذیل میں لا کے یہ کام کریں. تو تجارت اور بیع ہے، لیکن اس تجارت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ان کے نفوس کو ذکر الہی کے مقابلے میں اپنی طرف کھینچ لے. یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اور میں انشاءاللہ اس پر ہی بات اپنی تمام کر دوں گا آج کی حد تک. اور یہ معرفت نفس کے حوالے سے ایک کمال بیان ہے، اور میں نے جتنے بھی دوستوں اور ساتھیوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے نا، وہ دے ویئر سمپلی شاکڈ کہ اس قسم کے کوئی بیان بھی وجود رکھتا ہے. کیونکہ بہت ساری بعض اوقات آیتیں اور کلام معصوم میں ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے تصور میں کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں ہوتے، تصور سے ہی باہر ہوتے ہیں کہ یہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ فی البرہتے بعد البرہتے وفی ازمان الفترات، زمانوں کے بعد، زمانوں کے بعد زمانے، ادوار کے بعد ادوار، فی ازمان الفترات، فترات اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں انبیاء ظاہراً موجود نہ ہوں. اچھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایک جملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس آیت کے ذیل میں جن رجال کا، کچھ بندگان خدا کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آپ نے ان کو جو سب سے پہلی آئیڈینٹیٹی ان کی بیان فرمائی ہے کہ یہ اس زمانے میں ہوتے ہیں کہ جب انبیاء نہیں ہوتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہماری اس معروف اصطلاح کے مطابق یہ غیر معصوم ہیں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء سے خالی ازمان میں. عباد، ایسے بندے ہوتے ہیں، ناجاہم فی فکرہم، جن سے اللہ مناجات کرتا ہے، ناجاہم اللہ مناجات، اور اللہ سے مناجات کا مطلب کیا؟ مناجات کا مطلب ہوتا ہے وہ گفتگو جو انتہائی سرگوشی میں کی جائے، انتہائی رازداری سے کی جائے، وہ گفتگو مناجات ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی سنائی دے. ناجاہم، خدا ان سے مناجات کرتا ہے. کیسے مناجات کرتا ہے؟ فی فکرہم، ان کی فکروں کے رستے سے، لفظوں کے رستے سے نہیں. یعنی خدا اپنے کلمات کو ان کی فکر میں ایجاد کرتا ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، اور ان کی عقلوں کی جو ذوات ہیں، یعنی ان کی عقول کی پرسنالٹی سے کلام کرتا ہے. क्या जुमले हैं, इसको बयान करना। और इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा तारीफ करने के बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलाम से करीब होना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी जात की अजमत हर एतबार से, हर जहत से बहुत बहुत शानदार। ये क्या जुमले हैं, उनकी उकूल की जात से, यानी पर्सनैलिटीज ऑफ देयर उकूल, उनसे खुदा कलाम करता है। फस्तस्बहू बिनूरे यकवतिन फिल अस्माए वल अबसारे वल अफएदा। और अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक वो हैं कि जो सुकूत करते हैं अपनी जहालत और गफलत की बिना पर, और ये वो हैं कि जिनके अस्मा यानी समा को, सुनने की ताकत को, बसीरतों को और अफएदा कुलूब को खुदा ने अपने नूर से रोशन कर दिया है, उनकी फिक्रों में मुनाजात करके और उनकी जात उकूल से कलाम करके। और फिर उसके बाद आप इस खुतबे को पढ़िएगा कि उनकी निशानियां बयान की हैं। लेकिन इसमें जो आगे चल के जो बात आती है ना, और इंतहाई इंतहाई अजीब बात आती है कि जो हमारे लिए ना, जो हमारे लिए हकीकतन शॉकिंग है, हकीकतन हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। आप फरमाते हैं फकअन्नमा कताउद दुनिया इलल आखिरत। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने गोया दुनिया से आखिरत तक के रास्ते को कता कर लिया, इन्हें तय कर लिया, दुनिया से आखिरत तक के रास्ते को उन्होंने इस जिंदगी में तय कर लिया है। वहुम फीहा फशाहदू मा वरा अजालिका फकअन्नमा इत्तलाउ गुयूब अहलिल बरजख। और वो अहले बरजख के गुयूब को, यानी अहले बरजख पर जो चीजें छुपी हुई हैं, उनके लिए जो गैब हैं, वो यहां से बैठ के उनका मुशायरा कर रहे हैं। और मैंने पहली बात इसीलिए अजमान फतरात आपके लिए खास तौर से इसी बिना पर बात की थी कि ताकि हम फौरन ये ना कह दें कि जी ये तो मासूम के लिए, ताकि हम ये ना कहें जो खास बात है इसमें, कि ये उस जमाने के अंदर उन बंदगान की इमाम अली अलैहिस्सलाम बात फरमा रहे हैं कि जिनसे खुदा बराह रास्त मुनाजात करता है और कलाम करता है, खुदा मुनाजात और कलाम करता है, और जिनकी शान और अजमत ये है कि वो उन्होंने दुनिया से आखिरत तक के फासले को तय कर लिया है, वो आखिरत के मरहले तक पहुंच चुके हैं और बरजख उनके मातहत आ गई है, अहले बरजख के गुयूब पर, उनके गैबी मामलात पर वो मुत्तले हैं। और फिर अगर तुम उनको देख सको कि उनकी हालत क्या है, और क्या, कद हफ्फत बेहमुल मलाइका, फरिश्तों ने उनको घेरा हुआ है, व तनज्जलत अलैहिमुस्सकीनता, सकीना सुकून उन पर नाजिल होता है, वफुतिहत लहुम अबवाबुस्समा, और आसमानों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। ये भी नफूस इंसान है, इंसानी। और क्योंकि बार बार ये, और इसको मैंने खास तौर से क्यों जिक्र किया, इसलिए कि बार बार जब भी हम ये बात जिक्र करते हैं नफ्से मुतमइन की या अल्लाह बहिश्ते लिका की, तो सवाल यही होता है कि जनाब ये मकामात तो मासूमीन के लिए हैं, ये मकामात तो फकत उनके लिए हैं कि जिनको खुदा ने वहां तक पहुंचा दिया है, हम लोग तो इतनी जहालत में फंसे हुए हैं और ये हैं और वो हैं और हमारे नफूस की ये हालत है, ये तो बातें हमारे लिए है ही नहीं। इसीलिए मैंने खास तौर से आपको ये रेफरेंस दिया इमाम अली अलैहिस्सलाम के इन जुमलों का। अब मारिफत नफ्स के हवाले से अब एक मजबूत बुनियाद हमको मिल गई ना इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलेमात में से, पहली असल फराहम हो गई कि अब हम पहली असल से दूसरी असल की तरफ हरकत कर सकते हैं। अब ये पहली लेयर अपने उसके सीमेंट और मोर्टार जो भी है, अब आप लगा लें अपनी फाउंडेशन पर, अब आप उस पर दूसरी लेयर लगा सकते हैं। वो दूसरी लेयर कौन सी है? मारिफत रब। اب انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم اس پر آئیں گے کہ امام علی علیہ السلام اس معرفت رب کے حوالے سے کیا گفتگو فرماتے ہیں، اور اس میں ہمیں کن منازل کی طرف ان کو طے کراتے ہیں یا کن مقامات کی طرف ان کو اشارہ کرتے ہیں. تو اب اگر آپ چاہیں تو دوبارہ خطبہ اول کی طرف 2 منٹ کے لیے اپنی توجہ کو مبذول کر لیں کہ یہ سب کیسے ہوگا، اس جگہ تک کیسے پہنچیں گے، ان 3 چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر کے، امپلیمنٹ کر کے، کہ جس کو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان 3 چیزوں کے لیے خدا نے انبیاء کو انسانوں میں مبعوث فرمایا تھا. میثاق فطرت کو کھڑا کریں اپنی ذات میں، اسٹرانگ کریں فطرت کا جو عہد ہے خدا سے، الست بربکم، اس عہد کو زندہ کریں. اس کے بعد جو زندگی کی آیتیں ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے مادیت کے پردوں کو عبور کر کے حقیقت تک پہنچیں، اور اپنی ذات میں وہ انقلاب برپا کریں، وہ ثورہ برپا کریں کہ ہماری عقول میں سے دفاعن ہمارے لیے ظاہر ہو سکیں. انشاءاللہ ہم بھی اسی رستے پہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ یہ خالی معصوم کے لیے ہم نے یہ سب کچھ رکھا ہے اور باقی ہم نے سب کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ وسوسہ شیطانی ہے، کہ جس کے ذریعے سے شیطان ہماری ترقی کے آگے قدغن لگا دیتا ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم کربلا کی طرف رجوع کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو وہاں ہم کو یہی بات نظر آتی ہے کہ جناب سید الشہداء نے جو کام کیا، اور آپ نے اپنے اصحاب اور آپ کے اصحاب کی، تو یہ جملے میں انشاءاللہ بار بار اس بات کو دہراتا رہوں گا کیونکہ یہ بار بار تذکر کے لائق ہے، یہ تصور، یہ نظریہ، کہ ان حضرات کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذات کو کاملاً حجت خدا کے ہاتھ میں دے دیا تھا، بغیر کسی چوں چرا اف اینڈ بٹ کے، کہ یہ ان کے لیے مسائل نہیں تھے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری تجارت کہاں جائے گی، میرا بزنس کدھر، اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہوگا، سب معاملات ختم ہو گئے. صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی. تو اس وقت جیسے امام علی علیہ السلام فرما رہے نا، خدا نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے، اگر تم واقعاً اس در ولایت کے سامنے پورے اخلاص کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے سب کام کر دیں گے، تمہیں اس جگہ تک لے جائیں گے، تمہارے اندر سے اس میثاق فطرت کو، تمہاری عقل میں سے ان خزانوں کو نکالنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے، اور نکالنے میں مدد بھی کر دیں گے تمہاری. لیکن اس ہاتھ کو تو پکڑو، اس پیغام کو قبول تو کرو. تو اسی میں میں مختصراً آج امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، کہ اور اسی میں ایک ایسا مقام آئے گا انشاءاللہ کہ جہاں پر ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ جو لوگ حجت خدا، جو نفوس بھی حجت خدا کے زیر سایہ آ جاتے ہیں پورے اخلاص سے، ان میں ترقی کا معیار کیا ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام، ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے اگر یک جان اور دو قالب کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے. اگرچہ کہ ظاہراً امام حسن علیہ السلام کا کام اور امام حسین علیہ السلام کے کام میں بظاہر بہت فرق نظر آتا ہے، اور لوگ اس فرق کو تفریق کے طور پر بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو الگ الگ سنتیں ہیں، کہ ایک سنت حسنی جو ہے وہ صلو ہے اور سنت حسینی جو ہے وہ قیام ہے. جبکہ حقیقت یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی ہے. कि अगर हम इस बात को समझते हैं कि हुज्जते खुदा का हर फेल फकत और फकत दीन खुदा के कयाम और इस्तेहकाम के लिए होता है, उनके तमाम अमाल और अफाल सिर्फ उसकी डायरेक्शन ये होती है कि बंदगान खुदा रब्बानी हो जाएं, तो वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो खाली इसी जिमन और इसी जहत में ही होता है, चाहे वो जाहिरन सुलो हो या क्याम हो या जिहाद हो या कताल हो। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो काम है, अगर उसको दिक्कत की नजर से देखा जाए, तो वो हकीकतन वो बेस है कि जिस पर करबला तामीर हुई है। और अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो बुनियाद नहीं बनाते, उन थोड़े से जो लोग बच गए थे उस बनू मैया की लालच और खौफ की साजिश का शिकार होने से, जिनमें वो सच्चाई और इखलास अपनी कंप्लीट प्योरिटी के साथ बाकी था, अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम उन लोगों को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट नहीं करते, उनकी तरबियत नहीं करते, तो करबला में इमाम हुसैन के पास वो अफराद नहीं होते कि जिनकी बिना पर वो इंतहाई बाकमाल और अजीम शान और लाजवाल क़याम और कुर्बानी वकूफ़ पज़ीर हो पाई। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो अपना जो अदाए फ़र्ज़ इमामत है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्योंकि करबला एक ऐसा मकाम है कि जिस मकाम में आप यूं कह लीजिए कि अल्लाह की बारगाह में बंदगान खुदा की कुर्बानी और इजहार मोहब्बत अपने इंतहा को पहुंचाए, तो इसलिए उस मकाम पर हर मासूम ने अपना हिस्सा डाला कि उस मकाम पर कोई भी हस्ती ऐसी नहीं थी कि जिसने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पेश ना किया। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशकश जनाब जैनब और हजरत अब्बास हैं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह की पेशकश तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और इसी तरीके से खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम औलाद जाफर औलाद अकील और जितने भी आपके यानी आले मोहम्मद जो आपके करीबी थे सब की वहां पर कुर्बानी मौजूद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तीन फर्जंद थे जो वहां अपने चचा की हिमायत और नुसरत के लिए मौजूद थे। बड़े फर्जंद का नाम हसन था, खुद हसन था, और इस बिना पर उनको हसन मुसन्ना कहा जाता है। और हसन मुसन्ना का जो वाकया है वो भी एक अजीब करामत है कि आप मैदान जंग में तशरीफ ले गए और इतने जख्मी हुए कि फिर जंग के काबिल ना रहे, जमीन पर आ गए, और उनको मुर्दा समझ लिया गया, यानी ये समझ लिया गया कि उनकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर चुकी है, और इस हालत में ही वो रहे यहां तक कि ये काफिला उस सहरा से रवाना हो गया 11 मुहर्रम को। और बाद में जब करीब के कबीले वाले आए शुहदा के अजसाद व अजसाम को दफन करने के लिए, तो उन्होंने जनाब हसन मुसन्ना के जिस्म में जिंदगी की रमक पाई, उनको अपने घरों घर ले गए और वो दोबारा सेहतियाब होके और दोबारा अपनी जिंदगी गुजारी। दूसरे फर्जंद जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के थे, जिनका सने मुबारक 13 बरस का बताया जाता है, यानी जनाबे कासिम इब्ने हसन। और यहाँ पर ही मैं आपकी खिदमत में वो जुमला सुनाना चाहता हूँ जनाबे कासिम का, कि जब शब आशूर है, शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को जमा करते हैं, असहाब को जमा करने के बाद आप उनके लिए उनसे अपनी बैयत को उठा लेते हैं, और उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि ये फौज अशकिया, ये दुश्मन, ये लश्कर जर्रार, ये फकत और फकत मेरे खून के प्यासे हैं और तुम में से किसी से इनको कोई गरज नहीं है, मैं अपनी बैयत तुमसे उठाता हूं, तुम यहां से चले जाओ, मैं यहां तन्हा रहने पर आमादा, बल्कि मेरे घर वालों को भी अपने साथ लेके चले जाओ। और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन जुमलों का क्या जवाब आया आपके अकरबा की तरफ से, आपके असहाब की तरफ से, आपके अंसार की तरफ से? जब ये बात तय हो गई कि कल मैदान कारजार है और उस मैदान कारजार में हम सब अपनी जानों को फर्जंद रसूल पर निसार करेंगे राह खुदा में, और इस बारे में किसी किस्म की भी किसी कमजोरी का मुजाहरा ना करेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब व अंसार को दुआए खैर दी और फरमाया कि खुदा ने मुझे वो असहाब व अंसार अता किए कि ना मेरे नाना रसूल अल्लाह को मिले, ना मेरे बाबा अली को मिले, ना मेरे भाई हसन को नसीब। दुआ की, और उस वक्त जब आप पलट रहे थे तो आपने कोने में 13 साल के कासिम को खड़े हुए देखा, और आपने उनसे पूछा कि ऐ बेटा, बल्कि जनाब कासिम ने आपसे एक सवाल किया कि ऐ चचा जान, आपने शहादत का जिक्र किया, आपने कताल का जिक्र किया, आपने जिहाद का जिक्र किया, और मैं ये समझ रहा हूं कि कल इंशाअल्लाह ये जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं ये सब शहीद होंगे। ऐ चचा जान, कल शहीद होने वालों में मेरा भी नाम होगा, क्या उस फहरिस्त शहदा में मेरा नाम भी शामिल है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बेटा कासिम, तुम्हें मौत क्या समझ में आती, तुम्हारी नजर में मौत क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, अहला मिन अल असल, शहद से ज्यादा शीरी। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों की परवरिश, ये है हुज्जत खुदा की परवरिश का कमाल कि 13 साल का लड़का सबसे पहले इस बात की तलब और तमन्ना करे कि मेरा नाम शुहदा में हो, और उसके बाद जब उससे पूछा जाए कि ऐ बेटा तुम्हारी नजर में मौत क्या है, तो उस मासूमाना अंदाज से जवाब दे कि शहद से ज्यादा शीरिंग। और इस बात का हमें हकीकतन इल्म नहीं है कि वो वक्त कौन सा था कि जब कासिम इब्ने हसन ने मुतवातिर अपने चचा जान से आकर इज्ने जहाद और इज्ने शहादत तलब करना शुरू किया। और जैसा कि वाकयात बताते हैं कि जनाब कासिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रवाना करने वाली उनकी मादरे गिरामी हजरत उम्मे फरवा थी, और हजरत उम्मे फरवा के दिल में ये कसक करवट ले रही थी कि तमाम बीवियों की तरफ से कुर्बानियां रवाना हो रही हैं और मेरी तरफ से अभी तक कोई कुर्बानी जनाबे सैयदुल शुहदा फर्जंद रसूल की खिदमत में पेश नहीं की जा सकी। तो कासिम आते हैं, बार बार आते हैं, कहते हैं चाचा जान, मुझे भी इज्ने जहाद और शहादत अता करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई दफा वापस किया, और उसके बाद शायद जनाब उम्मे फरवा खुद कासिम का हाथ पकड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और फरमाया कि या अबा अब्दुल्ला, आज अगर आपके भाई जिंदा होते तो मुझे इस जगह तक आने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस बच्चे के बाप आपके बरादर अजीज इस दुनिया में नहीं है, तो शायद इस वजह से आप कासिम की कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन मैं खुद कासिम का हाथ पकड़कर आपके सामने आई हूं कि मेरी तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर होते हैं, 13 साल के भतीजे को घोड़े पर सवार करते हैं, मैदान जंग में भेजते हैं, और कासिम ने भी हैदरी और हाशमी शुजाअत के नमूने दिखाए, यहाँ तक कि एक मलऊन का गुर्ज आपके सर पे लगा। और जिसकी जर्ब की शिद्दत से आप घोड़े की जीन पर बाकी न रह सके, और वहां से जमीन पर तशरीफ लाए, और जमीन पर गिरते ही आपने ये सदा दी, या चचा जान मेरी खबर ले, या अम्मा ए चचा जान मेरी खबर ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस सदा को सुना, रिवायत के जुमले हैं कि एक शेर की मानिंद, एक बेचैन शेर की मानिंद आप उठे, अपनी तलवार को नियाम से निकाला और हमला करते हुए इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ कासिम की उस सदा की तरफ बढ़े। और उस वक्त वो मलऊन जिसने आपके सर पर गुर्ज का वार किया था, वो उस जगह पर मौजूद था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उसके उन हाथों को पता किया। ये जुमले बहुत कम हमको रिवायत मिलते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों को काट डाला, कि जिन हाथों से उसने कासिम के सर पर उस गुर्ज का वार किया था। उसने अपनी मदद के लिए फरियाद बुलंद की, चारों तरफ से घोड़े आना शुरू हुए, दौड़ना शुरू हुए, वहां पर गर्दो गुबार हद से ज्यादा बुलंद हुआ, और जब वो गर्दो गुबार छटा तो देखा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस नौखेज भतीजे का सर अपनी गोद में रखा हुआ है, और आप एक अजीब जुमला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ जान बरादर, मेरे लिए ये वक्त बहुत सख्त है कि तूने चचा को अपनी मदद के लिए पुकारा और तेरा चचा तेरी मदद न कर सका, और जब मैं तेरी मदद को पहुंचा भी तो मेरा पहुंचना तेरी जिंदगी बचाने के काम न आ सका। लअनतुल्लाही अलल कौमिज़्ज़ालिमीन, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, ربنا هب أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। परवरदिगार आलमीन हम सबको, आप सबको, आपकी दुनिया, आपकी आखिरत को जिक्र अज़ादारी सैयद शहदा अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल में नूरानियत इनायत फरमाए, जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइब से सुरखरू गुजर जाने का मौका इनायत फरमाएं। और हमें इस बात का पूरा एहसास है कि जो इस वक्त एक मुश्किल हालात पाकिस्तान के मोमिनीन के लिए पैदा हो रहे हैं, हमारी पूरी दुआ है, और आप हजरात भी जो दुआ पढ़ सकें, ज़ियारत आशूर पढ़ें, दुआ जोशन कबीर, दुआ जोशन सग़ीर की तिलावत करें, और खुदा की बारगाह में इल्तिजा फरमाएं कि खुदा इस फितने को जल्द अज जल्द हमारे सरों पर से दूर कर दे। तो हमें भी इस बात का पूरा एहसास है, और हम भी अपनी तमाम नमाजों में आप हजरात के लिए दुआगो हैं कि खुदा आपको हर किस्म की ऐसी मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे, और पाकिस्तान में ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर भी मोमिनीन के लिए काफ़ी मसाइल और मुश्किल हैं, तो खुदा उनको भी सहल और आसान फरमाए, और हमारे बसीरत को नूरानी करे कुरान और अहले बैत के वसीले से। और हमारी दुनिया तो बहरहाल जो यानी कि उसमें जो भी दुनिया तो है ही दार इब्तला और आजमाइश, लेकिन जैसे ही हमारी मौत और कब्र का मरहला आए तो वहाँ से हमारे लिए अबदी और दायमी सुकून और एक इंतहाई खुशगवार जिंदगी की इब्तदा हो। وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين।